द इंडिया फोरम संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक और सोशियोलॉजिस्ट प्रोफेसर सुरेंद्र एस जोतका। प्रोफेसर जोतका स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। आपने द इंडिया फोरम के अप्रैल अंक में पंजाब की बदलती कृषि प्रणाली पर लेख लिखा था। जोतका जी, हमें पंजाब में कृषि संकट के बारे में बताएं, वो संकट क्या है और पंजाब के किसान किस बात का विरोध कर रहे हैं?
नमस्कार। पिछले 6 महीने से आप सब लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर बहुत सारे किसान बैठे हुए हैं और वो जो मूवमेंट शुरू हुआ था नवंबर के लास्ट वीक में, उसकी शुरुआत पंजाब के किसानों ने की थी। तो क्या है पंजाब में जो खास बात है जिसके कारण पंजाब के फार्मर्स ने ये जो आंदोलन है शुरू किया? तो उसके कई कारण हैं, जैसे हर चीज़ के होते हैं। इतने हाई लेवल पे, लार्ज लेवल पे क्राइसिस है, आंदोलन है, तो उसके कारण भी बहुत सारे रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल एक किस्म की इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। जब भी हम खेती की बात करते हैं हिंदुस्तान में, तो पंजाब का नाम उसमें सबसे पहले आता है, क्योंकि पंजाब खेती के हिसाब से एक विकसित प्रदेश माना जाता है। पंजाब में ही जो ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले कामयाब हुई थी 1960 के दशक में, और उसके बाद पंजाब काफ़ी सारी जो है हमारे जो ग्रेन्स होते हैं जिससे खाना खाते हैं लोग, गेहूं, चीन और चावल, उसकी उपज में पंजाब काफ़ी आगे रहा है बाकी प्रदेशों से। तो पंजाब की जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी एडवांस्ड है, इन द सेंस के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनों का उपयोग होता है, ट्रैक्टर्स और कंबाइन हार्वेस्टर्स और अलग अलग तरह की मशीनें जो हैं वो पूरे देश के अगर कंपेयर किया जाए तो 2, 3 या 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे मशीनीकरण हो चुका है। ये इलाका ऐसा है जहाँ पे जो पानी सिंचाई के लिए है वो बाकी जगह से ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो पंजाब नाम है वो पंजाब 5 नहरें थी, दरिया थे, इसी के कारण उसको पंजाब कहा जाता था। अभी वो सारे 5 तो नहीं रहे क्योंकि पंजाब विभाजित हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी पानी है। और फिर जो भाखड़ा नंगल डैम बना था 1960 के दशक में जो तैयार हुआ था, उससे जो नहरें और कैनाल जिसको बोलते हैं, वो कैनालाइजेशन भी हुआ पंजाब का, तो नहरी पानी जो है पंजाब में दूसरे राज्यों से ज़्यादा है। और काफ़ी सारे लोगों ने अपने ट्यूबवेल लगा रखे हैं और जो ज़मीन की क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक ठाक है, तो वहाँ खेती को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। और पंजाब में क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन कामयाब हुआ, तो उसके साथ फिर लोगों की आमदन भी बढ़ी और पंजाब का एक किस्म से प्रोस्पैरिटी जो वहाँ पे लोगों की आमदन बढ़ी 1980 के दशक तक, 90 के शुरू तक पंजाब देश का सबसे अमीर देश माना जाता था पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। यहाँ के लोगों की आमदन जो एक साल में होती है वो सबसे ज़्यादा थी। लेकिन 90 के दहाके के बाद, क्योंकि एक नई आर्थिक नीति आई, उस आर्थिक नीति के चलते हुए जो खेती को इग्नोर करना शुरू कर दिया सरकार ने, निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, और जो मेन विकास होने लगा वो शहरी सर्विस सेक्टर और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ, तो उससे खेती की जो है वैल्यू भी कम हुई और खेती के जो आमदन भी लोगों की कम हुई। लेकिन पंजाब में फिर भी जो खेती को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि पंजाब का जो एवरेज होल्डिंग साइज़ है, जो लोग खेती करते हैं, जोत है, वो देश से अभी भी ज़्यादा है। देश में अगर 1-1.5 किला है एवरेज जोत, तो पंजाब में वो हेक्टेयर्स में माना जाता है 2-2.5 हेक्टेयर्स। सो जो जोतें बड़ी जोतें हैं उनका हिस्सा करीबन जो 2 हेक्टेयर 5 किले से ज़्यादा या 5 एकड़ से ज़्यादा जोत है, उनका हिस्सा करीबन 65-66% है। बाकी जो प्रदेशों में उनका हिस्सा सिर्फ 14-15% है। और पंजाब में जो क्योंकि पंजाब का जिस तरह से विकास हुआ है उसमें काफ़ी सारे लोग पंजाब को छोड़ के बाहर चले गए हैं, गांव से लोग शहर में आ गए हैं, खेती से लोग जो दूसरे काम धंधे हैं उसमें चले गए हैं, तो जो खेती पे जो फुल टाइम काम करने वाले हैं उनका नंबर भी पहले से कम हुआ है। तो पंजाब का जो पूरी आबादी का जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिनको एडल्ट मेल्स कहते हैं, वो उनका करीबन 26-27% जो लोग हैं वो फुल टाइम खेती में लगे हुए हैं, बाकी अलग अलग जगहों पे लगे हुए हैं। जैसा कि दूसरे प्रदेशों में भी हुआ है, नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट है और नॉन फार्म इनकम्स जो हैं बढ़ी हैं, लेकिन पंजाब में भी वो काफ़ी हद तक हुआ है। लेकिन जो लोग खेती में लगे हुए हैं वो काफ़ी खेती को सीरियसली लेते हैं, तो इसके कारण एक इंटरेस्ट है लोगों का एग्रीकल्चर को लेके। तो एग्रीकल्चर का जो फार्म क्राइसिस आता है, एग्रीकल्चर को जिस तरह से उसकी आमदनी कम होती है, आमदन कम होती है और लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं, मशीन है या बाकी जो सीड्स हैं वो सब बाहर से लेने पड़ते हैं, और उसके कारण जो है एक नए तरह का जो इंडेटेडनेस या जो उधार लेने की आदत है लोगों की, और खेती उसके बगैर हो नहीं सकती, खास तौर पे जो आम किसान है, जो छोटा किसान या मध्यम किसान है, उसको बाहर से लेना पड़ता है कर्ज। तो जैसे बाकी देशों में, बाकी प्रदेशों में हुआ है, पंजाब में भी इंडेटेडनेस बड़ी है फार्मर्स की, और जो इनकम कम होने से एक 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 सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन जो बोलते हैं, जो लोग शहरों में बैठे हैं उनकी इनकम ज़्यादा है और उनकी इनकम ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही है, और जो गांव के लोग हैं उनको लग रहा है कि हम पीछे रह रहे हैं। तो इस तरह से एक जो नया यूथ है जो पंजाब का, या जैसे कि दूसरे प्रदेशों में एक्चुअली वो काफ़ी भी हुआ है, उनके अंदर ये एक खेती को लेके एक इंडिफरेंस का पैदा हो रहा है कि खेती में फ्यूचर नहीं है, तो वो भी एक क्राइसिस का कारण है कि खेती अपने आप में एक एक क्राइसिस में है कि खेती का फ्यूचर क्या होगा, खेती को लेके आगे कैसे होंगे। तो ये सब लोग इसको लेके चिंतित हैं, और जैसे ये तीन कानून आए तो उनको लगा कि अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बिल्कुल जो खेती का कॉरपोरेटाइजेशन हो जाएगा और हमारी जो अपनी थोड़ी बहुत ही आमदन आती है, हमारी अपनी जो अटोनमी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो इसको लेके लोगों में एक रोष पैदा हुआ, और जो पंजाब में 1970 के दहाके में एक नए किसान आंदोलन शुरू हुए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, जो 1980 के दहाके में काफ़ी नेशनल लेवल पे इमर्ज हुए, तो वो सब यूनियंस जो हैं वो उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया, और वो एक इकट्ठे होके, और वो उन्होंने प्रोटेस्ट पहले पंजाब के लेवल पे किया, लेकिन उनको लगा कि क्योंकि ये केंद्रीय सरकार ने कानून बनाए हैं इसलिए ज़रूरी है कि दिल्ली में जाके इसके बारे में प्रोटेस्ट किया जाए। तो उस तरह से वो नवंबर के आखिरी हफ्ते में, जो 26-27 नवंबर को वो दिल्ली पहुंचे, और उसके बाद पिछले 6 महीने से वो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं। काफ़ी मुश्किलों में ये आंदोलन चलाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सर्दी भी हुई, अब गर्मी हो गई है, बीच में बारिश भी होती है, और इतने सारे लोगों को यहाँ लेके बैठना, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, तो इस सब में काफ़ी खर्चा होता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, ये चारों जो स्टेट लगते हैं दिल्ली के आसपास, वहाँ हर हाईवे पे पंजाब ये फार्मर्स के प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं, और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी रहे हैं, काफ़ी दुनिया ने उसके बारे में बात किया है, अखबारों में छपा है, टीवी पे आया है, दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई है, दुनिया भर में उसके सपोर्ट में बाकी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया है। लेकिन अभी जो है 6 महीने के बाद एक 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 लल सा हो गया है, क्योंकि कोविड का एक नया फेज़ आ गया, उसके कारण भी लोग डर गए। तो लेकिन आंदोलन अभी भी चल रहा है, और फार्मर अपनी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं।
आपने बात की ग्रीन रेवोल्यूशन की, आप हमें बताएं ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति ने पंजाब में खेती बाड़ी और कृषि समाज को कैसे बदला है?
अगर हम देखें कि जो पंजाब और या वैसे अगर गांव की बात करते हैं आज हम, तो पिछले जो 3-4 दशक हैं, खास तौर पे 1970-80 के बाद जो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उससे जो गांव का समाज है और गांव का खेती करने का तरीका है वो काफ़ी बदल गया। जैसे पहले बात कर रहे थे कि खेती पहले लोग अपना गांव में रह के करते थे, अपने बलद होते थे, और मेनली जो कमाई वो खेती की उपज होती थी वो अपने खाने पीने के लिए होती थी, थोड़ा बेचते थे और उसके बदले में बाकी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आते थे। लेकिन खेती का जो प्रोडक्टिविटी था, जो एक एक किले में जो क्या कितना उपज करना है, आपके बीज भी अपने होंगे, खाद डालने के लिए भी आप जो अपना जो कंपोस्ट है उसी को यूज़ करते थे, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता था खेती करने में, आमदन भी कम थी, खर्चा भी कम था, लेकिन उस हिसाब से वो जो एक गांव की आर्थिकता है और रीजन की आर्थिकता है वो चल रही थी। खेती काफ़ी सारी बाहर भी जाती थी, ये नहीं था कि पहले लोग बाहर नहीं बेचते थे, पहले भी बेचते थे और लोग अपना आमदन भी कमाते थे, लेकिन रहन-सहन एक अलग किस्म का था। ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया 1960 के दहाके में, एंड ऑफ 1960s, वो बाहर के नए बीज आए, उन बीजों को उपजाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए मशीनें चाहिए, उसके लिए जो है आपको खाद डालना पड़ता है, वो बाहर वाला खाद है जो आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा, जो 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 केमिकल फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं, या फिर उसके बाद अगर आपकी फसल में आपने इतना खर्चा किया है, उस पर कीड़ा लगता है तो उसके लिए दवाई भी आपको बाहर से ख़रीद के लानी पड़ती है जो बहुत महंगी होती है। आपको ट्रैक्टर चलाना है, उसके लिए ट्रैक्टर का खर्चा है, डीजल ख़रीद के लाना पड़ेगा। आपने अपना ट्यूबवेल लगा रखा है, ट्यूबवेल चलाने के लिए मोटर है, मोटर का खर्चा है। तो खेती जो है वो उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 1970 के दहाके में बदलना शुरू हुआ और बहुत जल्दी बदल गया। और उस बदलाव में सबसे बड़ी बात ये थी कि खेती की जो है वो नए जो सीड्स आए, जैसे कि पहले धान इतना ज़्यादा नहीं होता था पंजाब में, फिर धान की उपज भी होने लगी और नए सीड से जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, जो एक किले में एक एकड़ में अगर पहले 5 क्विंटल अन उगता था तो अब वो 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक उगने लगा। तो बहुत ज़्यादा खेती की जो है इंटेंसिटी बढ़ी और खेती का खर्चा बढ़ा, लेकिन खर्चे के साथ साथ आमदन भी बढ़ी और आमदन बढ़ने से लोगों का रहन सहन भी बदल गया। पहले जो लोग बलद रखते थे वो निकाल दिए लोगों ने, मशीनें आ गई और मशीनों से खेती जल्दी हो जाती है, और मशीनों से ये भी था कि जो बाकी ज़मीन खाली पड़ी थी वो भी उपज में आ गई, और उपज में आने के बाद एक 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 अलग तरीके से खेती के प्रति लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हो गया। पहले गांव का एक अपना समुदाय वाली ज़िंदगी होती थी, हालांकि गैर बराबरी बहुत थी, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ शुरू से रहा है और कास्ट में कुछ तबकों के पास ज़मीन बिल्कुल नहीं होती और वो मजदूरी का काम करते हैं खेती पे, और वो मजदूरी का काम करने का अलग अलग अरेंजमेंट होता था कि जैसे आप एक आदमी के पास काम कर रहे हैं, एक ही किसान के साथ आपका पूरा परिवार काम करेगा और वो परिवार काम करेगा एक पार्टनरशिप, या जिसको साजी या सीरी बोलते हैं पंजाबी में, वो एक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप रहता था कि आप ठीक है, आप कमज़ोर तो हैं, आप मज़दूर तो हैं, लेकिन आपका हिस्सा रहेगा खेती में, आपको जो जो साल के बाद या 6 महीने के बाद फसल आएगी उस फसल का जो है 5वां हिस्सा दिया जाएगा या 4था हिस्सा दिया जाएगा, और आप मजदूरी कीजिए और ज़मींदार की जो ज़मीन है वो थोड़ा खर्चा भी अपना करेगा, लेकिन आपका जो रिश्ता था वो हिस्से वाले था, उसमें ऑब्लिगेशन भी रहती थी, एक बॉन्डेज भी रहती थी, क्योंकि आप पैसा उधार लेते रहते थे अपने ज़मींदार से, लेकिन उसमें एक अलग किस्म का, जिसको हम पेट्रोनेज की बात करते हैं, उस तरह का संबंध था। अब एक बार ट्रैक्टर आ गए तो उससे खेती एकदम से कमर्शियल तरीके से होने लगी, क्योंकि किसान को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता और इन्वेस्ट करने के लिए उसको मजदूरी जो है उसको भी वो इंस्ट्रूमेंटली सोचने शुरू कर दिया कि मेरे को कब कितना मजदूर चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलेगा, एक परिवार से काम नहीं चलेगा। जब हार्वेस्टिंग होती है तो अचानक आपको 50 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और आप चाहते हैं कि 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में सारी कटाई बिजाई हो जाए। मशीनें आने से भी वो आसान हो गया काम। तो हुआ क्या कि खेती जो है उसका करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। जो पहले वाला अटैच लेबर थी या जो लोग एक दूसरे से हिस्से पे दे के काम करते थे वो सब ख़त्म हो गया और एक नए किस्म का, जिसको हम पूंजीवादी तरीके से खेती होने लगी, कि जिससे आप मजदूर आप एक दिहाड़ी पे लगाएंगे या एक महीने पे लगाएंगे, उसको आप वेज देंगे, जो पहले आपका साजी था वो आपका नौकर बन गया। तो ये परिवर्तन जो है 1970 में ही आना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर एक और परिवर्तन ये आया कि लोगों ने मैकेनाइजेशन किया तो खेती में जो मजदूरी की ज़रूरत है वो कम हो गई, और मजदूर जैसे कि बाहर से लोग जो आने लगे, एक पहले इनिशियली जो ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, लोकल जो दलित था उसको खेती में काम करना अच्छा नहीं लगता था, और बाहर से मजदूर आने लगे बिहार वेस्ट ईस्टर्न यूपी से, जहाँ पे आमदन कम थी जो लोग खेती में काम करते थे, तो काफ़ी सारा माइग्रेंट लेबर पंजाब में आने लगा, तो उन्होंने लोकल लेबर को रिप्लेस कर दिया। जो गाँव का समाज है वो काफ़ी बदल गया उससे, वो ये है कि जो कास्ट लेवल पे जो पहले इंटरडिपेंडेंस था किसी लेवल का, वो नियरली ख़त्म हो गया और हर कम्युनिटी, हर कास्ट जो है अपने अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जीने लगी। और जो पंजाब की जो जैसा कि दूसरे राज्यों में भी है, सारी ज़मीन जो है वो एक कुछ जातियों के पास है, जैसे हमारे यहाँ जट्स हैं या जट सिक्स हैं या कुछ और खेती करने वाली जातियाँ हैं, जैसे कि कंबोज हैं, और भी 2-4 जातियाँ हैं जो उनके पास ज़मीन है, लेकिन जो दलित है, जो पंजाब में 30% से ज़्यादा उनकी आबादी है, 32% के आसपास है, उनके पास ज़मीन ना के बराबर है जो खेती करने वाली ज़मीन है। तो वो एक अलग किस्म का एक डिवीज़न पंजाब में है, और वो जो उसके साथ क्या होता है कि गाँव में वो काफ़ी सारे लोग रहते हैं और जो जाट्स जो हैं वो पहले तो उनका आपस का एक रिश्ता अलग किस्म का था, अब जैसे जो 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 उनका संबंध एक इंटरडिपेंडेंस वाला रहा नहीं, तो उससे उसमें कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ा। आप में 1990 के दहाके में या 21वीं शताब्दी के पहले दशक में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए पंजाब के। दलित्स को भी अपना एक नया अवेयरनेस आया, उनकी राइट्स की जो है उनको अवेयरनेस आया कि हमारे कुछ अधिकार हैं, जो पंचायत की ज़मीन है जिसको आप बोली देते थे पहले तो सब जाट ले जाते थे, तो दलित भी आने लगे कि अभी हमारे को भी हमारे हिस्से की बोली दीजिए, तो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट हुए। बाकी जो गांव के कॉमन रिसोर्सेज हैं जैसे कि तालाब हैं उनको लेके टेंशन होना शुरू हुआ, तो उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है पंजाब के गांव में बढ़े, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइज हो गए। एक एक, एक प्रजातांत्रिक तरीके से जो एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है उससे उनका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकलने लगा कि लोग एक दूसरे बात करने लगे, एकोमोडेट करने लगे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी वो जो डिफरेंस था, इनइक्वालिटी थी वो रहने लगी। और खेती से बहुत सारे लोग निकल के जैसे बाहर जाने लगे, तो लोग देश से भी बाहर गए, काफ़ी सारे जो पंजाब के फार्मिंग फैमिली से सिख परिवार हैं वो कैनेडा में हैं या यूके में हैं या ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो उससे गाँव में जो एग्रीकल्चर पर असर जो प्रेशर है वो कम हुआ, और वो ज़मीन जो है वो बेचते नहीं हैं लेकिन जनरली अपने रिश्तेदारों को लीज़ पे दे देते हैं, जो आते हैं इसी बहाने उनको लगता है कि हमारा एक रिश्ता बना रहेगा। तो उससे एक ग्लोबलाइजेशन भी हुआ है पंजाब की कम्युनिटीज़ का, दलित लोग भी काफ़ी बाहर गए हुए हैं तो उनका भी एक अपने अलग से रिसोर्सेज हैं, तो वो एक पंजाब के जो गांव की राजनीति है वो भी अब गांव तक सीमित नहीं रही, उसके कनेक्शन काफ़ी ग्लोबल हो गए हैं, और फिर उससे आना जाना बना रहता है, आने जाने से फिर वो रिसोर्सेज भी आते हैं, गाँव में पैसा आता है, नई कंस्ट्रक्शन होती है, घर बड़े बड़े लोगों के बन गए हैं, तो गाँव का जो माहौल है वो पूरी तरह से बदल गया है।
आखिर में सुरेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब में खेती का भविष्य कैसा है और आगे क्या चुनौतियां हैं।
तो आज के दिन में अगर देखा जाए तो क्या है खेती का फ्यूचर क्या है, अब ये एक एक धारणा जो हमारा जो खास तौर पे जो जो अर्थशास्त्र के लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ये धारणा है कि जो जैसे विकास होता है वैसे खेती कम होती जाएगी और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में चले जाएंगे, शहरों में चले जाएंगे, सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, और वो सब हो भी रहा है, इन सम सेंस वो हो भी रहा है, और खेती का जो है जो हिस्सा हमारी नेशनल इनकम है वो कम हुआ है, खेती पे काम करने वालों का जो 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 नंबर है वो भी कम हुआ है, बहुत सारे लोग खेती छोड़ गए हैं, लेकिन उस तरह का जो परिवर्तन जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ है, उस तरह का परिवर्तन एक्सपेक्ट करना कि हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, भारत में हो जाएगा, वो संभव नहीं लगता, क्योंकि जो जिस तरह से गांव बदल रहा है और जिस तरह से शहर का विकास हो रहा है उसके अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और गांव में जो खेती है वो काफ़ी सारे लोगों को एक एक समेट के रखती है, उसमें एक एक स्पंज की तरह काम करती है, जिसको कहीं कुछ नहीं मिलता वो वापस खेती पे आ जाता है, उसको कहीं ना कहीं पे थोड़ा मजदूरी मिल जाती है, कुछ कमाई हो जाती है, और ये जो है ये तरीका सारे देश में चल रहा है। तो ये जो नंबर इकट्ठे किए जाते हैं, डेटा इकट्ठा किया जाता है सरकार के द्वारा या सरकार की एजेंसियों के द्वारा, ये भी काफ़ी एक एक मैकेनिकल तरीके से किया जाता है, उसका असल में जो गाँव का जो जो एक एक रहन सहन का तरीका है उसमें जो खेती की वैल्यू है वो कहीं ज़्यादा है। हालांकि जो खेती से लोग बोलते हैं कि अब हमारे नेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम को वो कम होकर 15-13% तक रह गया है, वो किसी हद तक बात सही है, लेकिन खेती का कंट्रीब्यूशन उससे कहीं ज़्यादा है अगर देखा जाए खेती को एज ए कल्चर, एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं, शहरों में काम करते हैं, उनका भी कनेक्शन गांव से बना रहता है, बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर है जो फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करेंगे या बंबई की बात करेंगे या मोस्टली जो शहरों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, या आपने देखा होगा कि ये सारे के सारे लोग आते हैं गाँव से लेकिन वापस चले जाते हैं, तो एक सर्कुलर माइग्रेशन जो है वो उनको सस्टेन क्या करता है, उनको सस्टेन करता है क्योंकि उनकी फैमिली गांव में रहती है, गांव में रहती है तो गांव में बच्चे पैदा होते हैं, गांव में बच्चे बड़े होते हैं, उसका खर्चा कम है, इसलिए वो शहरों में आके कम मजदूरी पे भी काम कर रहे हैं, और शहरों का भी काम चल रहा है और गांव का भी काम चल रहा है। इसी तरीके से बाकी भी आपको देखेंगे जो जैसे पंजाब में उस तरह के माइग्रेंट लेबर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और ग्लोबल जो कैपिटल है वो भी वापस आ रही है। तो एग्रीकल्चर का जो लोग अभी भी अपना जो आइडेंटिटी है वो एग्रीकल्चर के साथ बना के रखते हैं लोग, और वो आइडेंटिटीज काफ़ी स्ट्रांग है और वो बिल्कुल सामने निकल के आई जब ये किसानों का आंदोलन चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से आके वापस किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं। तो इसलिए खेती का जो फ्यूचर है उसको सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं देखा जाना चाहिए, एक रहन सहन के तरीके से हिसाब से देखा जाए, एक 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 एक, एक, एक कल्चर के हिसाब से देखा जाए, तो वो एक उसको सोचने का तरीका अलग होना चाहिए कि किस तरह से जब शहरीकरण भी हो जाता है उसमें भी खेती साथ में आती है, जब ग्लोबलाइजेशन भी हो जाता है उसमें भी आपकी पुरानी जो आइडेंटिटी है, गांव की आइडेंटिटी है, जात की आइडेंटिटी है, वो आपके साथ रहती है और आप उसके साथ आइडेंटिफाई करते रहते हैं। और उसका एक जो प्रोसेसिंग है, उसकी सारी जो म्यूज़िक है, कल्चर है, उसको क्वांटिफाई करना मुश्किल है। तो उसको एक खेती को उस तरीके से भी देखना ज़रूरी है, लेकिन खेती का जो कोई फ्यूचर एज सच कोई लंबा चौड़ा फ्यूचर दिखाई नहीं देता, क्योंकि जिस तरह से खेती में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था ताकि एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल बनी रहे, वो नहीं हो रहा। और वो आज की सरकार ये सोच के चल रही है कि वो कॉरपोरेट सेक्टर आके करेगा। अब कॉरपोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट है खेती में, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो व्यापार है खाने पीने की चीज़ों का, ये भी हमारे हाथ में आ जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, उससे जो है लोकल लेवल पे जो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, अगर लोगों को आप मार्जिनलाइज कर दोगे, खेती से दूर कर दोगे, तो उनमें गुस्सा बढ़ेगा, उनमें एक सेंस ऑफ एलियनेशन जिसको बोलते हैं वो बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरत यह है कि स्टेट को खेती में इंटरेस्ट लेना चाहिए और लोगों के साथ मिलके, किसानों के साथ मिलके, उनको अच्छे तरीके से लोन देके, जैसे कि पहले सरकार करते थे, कोऑपरेटिव फार्मिंग के एक नए अल्टरनेटिव तरीके देखे जाएं, जिसमें किसान खुद आके ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस करें, ग्लोबली मार्केट्स को देख के खेती को रीइमेजिन करने की ज़रूरत है। और उसके फ्यूचर का सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी खेती से जुड़े हैं। इवन अगर आप कम से कम भी लें तो अभी आपके 25-30% लोग जो हैं बिल्कुल मेन वर्कर्स जो हैं वो खेती में लगे हुए हैं। खेती अभी भी इतना कोई भी सेक्टर नहीं है जो इससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता हो, बाकी सब सेक्टर इससे कम एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो खेती एक बहुत इम्पोर्टेंट इकॉनमी का सेक्टर है और उसको इग्नोर करना एक बहुत ही जो है पॉलिटिकली अच्छी बात नहीं है। और उसको ज़रूरत यह है कि सरकार उसको लग के और इंटरेस्ट लेके, उसमें किसानों के साथ बैठ के, लोगों का अपना ओपिनियन लेके, एक अल्टरनेटिव तरीके से उसको देखा जाए, ताकि खेती में लोगों का फ्यूचर बने और फ्यूचर में खेती का फ्यूचर बने। थैंक यू वेरी मच।
धन्यवाद। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे फॉरवर्ड करें। द इंडिया फोरम को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें और पढ़ते रहें द इंडिया फोरम .in।